समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। हेलो अनीता।
हेलो जया, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू परिक्रमा ऑन FM 100.1 megahertz. As always, for our listeners, we bring you reports, business updates, tributes, and much more over the next half an hour. So let's begin with the headlines first. Election for Vice President of India to be held on 9th of September. Last date for filing nominations will be 21st of August.
बिहार में मतदाता सूची विवाद को लेकर संसद में हंगामा। विपक्ष के इस मुद्दे पर चर्चा की मांग। संसद के दोनों सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित।
इलेक्शन कमीशन शेयर्स ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 2025 विद ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स कम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऑफ बिहार।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आज से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI के लिए नए नियम लागू किए।
And US President Donald Trump imposes tariffs on several nations, including 25% on India, effective from 7th of August. And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global levels. Today we will talk about the development of tsunami warning systems in India, from the 2004 Indian Ocean tsunami to present. Listeners, you must have surely seen the devastating visuals of and heard the news about the powerful 8.8 magnitude earthquake that struck off the coast of Russia's Kamchatka Peninsula.
भूकंप का यह केंद्र पेट्रो पावलोस्क क्रैमचेस्की से 119 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में करीब 19 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके बाद भी 6.9 की तीव्रता का एक शक्तिशाली आफ्टर शॉक आया। यह मार्च 2011 में जापान में आए विनाशकारी 9 की तीव्रता के भूकंप के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप है जिसने फुकुशिमा परमाणु आपदा को जन्म दिया।
And the 8.8 magnitude earthquake off Kamchatka is classified as a great earthquake, a rare event globally also. According to the US Geological Survey, earthquakes of this scale release immense energy, with each whole number increase in magnitude corresponding to roughly 31.6 times more seismic energy.
बिल्कुल, उदाहरण के लिए कैमचेत का भूकंप ने मार्च 2024 में म्यांमार में आए 7.7 की तीव्रता के भूकंप की तुलना में 30 गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित की। रूस के कैमचेत का प्रायद्वीप के तट पर आए इस भूकंप के कारण प्रशांत क्षेत्र में व्यापक सुनामी की चेतावनी जारी की गई।
Well, a tsunami is a series of massive waves, we know, produced by an underwater disturbance typically linked to earthquakes that happen beneath or close to the ocean. The Japanese words su, which means harbor, and nami, which means a wave, make up the word tsunami. Unlike normal waves, which are caused by the wind and have short wavelengths, tsunamis are caused by geological events such as earthquakes, underwater volcanic eruptions, landslides, or even asteroid impacts. They have extremely long wavelengths and can travel at high speeds across ocean basins.
हर 5 से 60 मिनट में आने वाली लहरों के साथ सुनामी तटरेखा पर हमला कर सकती है और घंटों तक खतरनाक बनी रह सकती है। सुनामी की लहरें अक्सर पानी की दीवारों जैसी दिखती है और यह दिन या रात किसी भी समय आ सकती है। भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट या दुर्लभ क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से समुद्र में होने वाली महत्वपूर्ण हलचलों से सुनामी उत्पन्न होती है। ये बल भारी मात्रा में पानी को विस्थापित करते हैं जिससे लहरें उत्पन्न होती हैं जो तटीय क्षेत्रों को तबाह कर देती है।
Also, dear, tsunami risk and hazard mitigation involve proactive measures such as advanced early warning systems, evacuation planning, public awareness initiatives and natural barriers to minimize destruction, also safeguard lives and enhance resilience in vulnerable coastal areas. The establishment of systems like the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System, IOTWS, provides early alerts to vulnerable regions. And yet, countries prone to tsunamis have advanced sensors also, seismographs and tide gauges to detect and also monitor seismic activity and water levels.
जी हाँ, 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने पूर्व चेतावनी प्रणालियों में गंभीर कमियों को उजागर किया, जिससे वैश्विक और क्षेत्रीय सुनामी तैयारियों में उल्लेखनीय प्रगति हुई. भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र यानी ITEWC की स्थापना, उन्नत निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसी पहलों ने आपदा प्रतिक्रिया में उल्लेखनीय सुधार किया है. फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं, खासकर विकासशील देशों में.
Absolutely. The Indian Tsunami Early Warning Center, ITEWCS, was established in 2007 by the Union Ministry of Earth Sciences. Indian Tsunami Early Warning Center operates from the Indian National Center for Ocean Information Services, that is INCOIS, in Hyderabad, using seismological stations, bottom pressure recorders and tidal stations across the Indian Ocean Basin to detect and issue early warnings for potential tsunamis. Akashwani talked to the director of Indian National Center for Ocean Information Services, that is INCOIS, Dr. Balakrishnan Nair, to know more about the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System. Let's listen in.
So Indian Tsunami Warning Center is one of the state-of-the-art early warning system for tsunamis, especially focusing on Indian region. But we are also the service provider for 25 countries in the Indian Ocean region. So Indian Tsunami Warning Center is based upon three pillars, mainly the ocean monitoring, tsunami monitoring, based upon the observation systems put at the sea, that is called the BPR. That bottom pressure recorder, when the tsunami comes, it will trigger and give us the information that there is a pressure change in the deep ocean. Then in addition to the seismometer, we are getting the information on earthquake from all global areas. Within 5 minutes, we can detect the epicenter of the earthquake anywhere in the world. And if it is ocean, we have a SOP, standard operating procedure. So if it is more than 6.5 and it is less than 10 kilometer in the ocean, our SOP will work and see that whether there is a tsunami. If tsunami is coming, we will confirm this one by the ocean bottom pressure recorders and the tide gauges area and the deep ocean. So how we are predicting the tsunami travel time and the magnitude is, we have the computer model. Using this computer models, we made a lot of tsunami scenarios at a different location of two areas, that is Sunda subduction zone and the Makran subduction zone. So we will see the magnitude and the travel time of the tsunamis for entire Indian coast. So accordingly, we will be giving 4 bulletins. Our system is much higher in order, because we have a full-fledged ocean observing and monitoring for the tsunami warning, as well as we got the 24/7 tsunami warning system at INCOI, Hyderabad. So we are continuously monitoring this. So recently, after this Russian tsunami, we also triggered our system with support from the National Disaster Management Authority. We are now making a lot of communication tests all along the Indian coast to make our tsunami warning system robust and well prepared, and any tsunami comes any time in the Indian Ocean, which affects the Indian Ocean region.
And yeah, India became the 5th country globally to have advanced tsunami warning system, joining the US, Japan, Chile and Australia. Globally, sea level monitoring stations have increased from just one in 2004 to 14,000 today to detect rising sea levels and also potential tsunamis.
पूर्व चेतावनी प्रणालियां अब बेहतर एल्गोरिदम और तेज सुपर कंप्यूटरों का उपयोग करती है, जिससे त्वरित मॉडलिंग संभव हो पाती है और जिससे सुनामी के व्यवहार का तेज और अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव हो पाता है.
सो लिसनर्स, प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज एज इम्पोर्टेंट टू टैकल सच अ डिजास्टर. फॉर एग्जाम्पल, मैनग्रोव्स, कोरल रीव्स and sand dunes help reduce tsunami impact by absorbing wave energy before it reaches the populated areas. Coastal reforestation project can serve as natural tsunami barriers.
यह ठीक ही कहा गया है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है, इसलिए बेहतर होगा कि हम विज्ञान की मदद से उच्च प्रौद्योगिकी प्रणालियां विकसित करें ताकि ऐसी बड़ी आपदाओं का पहले से ही अनुमान लगाया जा सके और उनके बाद होने वाले नुकसान को यथासंभव रोका जा सके.
Absolutely, and I quote here, we cannot stop natural disasters, but we can arm ourselves with knowledge. So many lives wouldn't have to be lost if there was enough disaster preparedness. Petra Nemkova.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
द फोर्थ एडिशन ऑफ मैनिफेस्ट साउथ एशियाज ओनली एनुअल इंटरनेशनल डांस फिल्म फेस्टिवल बिगैन टुडे इन पुदुचेरी. Organized by Oro Apar, a city-based dance film collective, the three-day event is being held at the Allianz Francaise Auditorium. The festival will feature over 50 dance films from across the globe, celebrating the confluence of cinema and movement. More from our correspondent.
The festival opens tonight with the world premiere of Snake in the Grass, directed by internationally acclaimed French filmmaker and choreographer Fu Lu. The film follows Tara, a woman from a traditional village who elopes with a construction worker, stirring turmoil in the community. It explores themes of societal control and forbidden love. Fu Lu, a self-taught artist associated with the Tetrapod Dance Company, was a laureate at the Villa Swagatha Residency in 2024, where this film was developed. The opening night will also feature six compelling films from China, USA and France, including Ma, Maldon, Whirlwind, Pooling and Chiron in Leo, showcasing the range and diversity of the year's selection. The festival includes several Asian premieres such as Foray by Belgian-French choreographers Anna Teresa D. Kismakar and Nemo Floret, The Sea by US-based Douglas Rosenberg, and Mama Dancers, a US-China collaboration by Jinki Guang and Yang Tao. For the first time, Manifest features an Indian competition session highlighting the homegrown talent. Films like On Which Foot to Dance, Yum, Overspill, Amorphous, and The Farming Land will be screened on Saturday. Talking to Agashwani, festival curator Ashawari Majumdar said that the films were selected from around 150 submissions received globally. For the next 3 days, cinephiles in Puducherry can step into the rhythm where cinema and dance converge as one. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Agashwani News, Puducherry.
केरल के स्कूली छात्रों को मध्याह्न भोजन में वेजिटेबल फ्राइड राइस और वेजिटेबल बिरयानी मिलेगी. शिक्षा विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अनुसार इसे लागू किया जा रहा है. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
Students of Kerala schools will get vegetable fried rice, vegetable biryani, steamed snack and other healthy foods from today onwards. This will be given on different days in place of regular rice meals. Fortified rice enriched with essential micronutrients also will be given once every week. Microgreens are also included in the menu. Oil-fried snacks will be replaced with the steam-cooked ones. The new menu is designed to curb children's inclination towards fast food and to promote healthy eating among them. M. Smithy, Agashwani News, Tiruvananthapuram.
And coming back to the capital, Delhi, to celebrate the vibrant heritage from the hills of Meghalaya's tropical bounty, the Meghalaya Pineapple Festival was inaugurated at Delhi Heart INA in New Delhi today. The festival was inaugurated by Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan and Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma. The fest, organized by the Meghalaya government, celebrates the state's flagship fruit, pineapple. A report.
The three-day Meghalaya Pineapple Festival features over 100 farmers and various processing units from across the state in this vibrant celebration of taste and tradition. The aim of the festival is to foster exposure to the farmers and provide them a platform to directly engage with the customers. Speaking on the occasion, Union Minister Shivraj Singh Chauhan said, Meghalaya is known for its variety of organic products such as ginger, jackfruit, mushroom, spices, among others. He also held the agriculture and horticulture production of the state.
Meghalaya ke pineapple utsav mein Delhi walo जरूर आना और मेघालय वासियों के दिल को देखना. शुद्ध और पवित्र हृदय के लोग आप यहाँ के शुद्ध उत्पादों से आपका परिचय कराएंगे और देशवासियों से भी मैं अपील करता हूँ कि अपने देश में नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में उत्पादित फल हो, सब्जियां हो, मसाले हो, यहाँ के राइस की भी अपनी विशेषता है, उनका जरूर उपयोग करें।
Talking exclusively to Akashvani News, Commissioner and Secretary of the Meghalaya State Agriculture Department highlighted the natural sweetness and superior quality of the pineapple grown in the state.
Meghalaya, there is a huge amount of pineapple, almost 1.5 lakh metric tons of pineapple is grown. And as the Union Agriculture Minister just said, a lot of what is produced in Meghalaya is naturally organic. We are also in the process of getting this certified. We have about 30,000 hectares of area under certification. Another 70,000 hectares we want to get certified, and we want to become Northeast largest organic state also.
Farmers from Meghalaya expressed their joy as they got an opportunity to directly interact with the customers and showcase their produce.
Mera naam Prin Ronghang hai. Main Umwangplun IBCS ka chairman hu. Hum log pehle 2 saal se anaras hum log kheti karke aa rahe hain, lekin abhi sarkar ke taraf se abhi 5 saal hua hai. In log ke taraf se hum log bahut bahut benefit hua hai aur abhi naya project mila hai aur agla bar aur zyada se zyada hum log mil jayega.
हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना नोंगरूम, मैं उमसनिंग ब्लॉक से है। मैं यहाँ दिल्ली में है पाइनएप्पल फेस्टिवल में। मेरा यहाँ पाइनएप्पल फेस्टिवल में मैं पाइनएप्पल कैंडी, ड्राई पाइनएप्पल और पाइनएप्पल जाम, मैं अब सब दिल्ली वाले को ये बोलना है कि आओ, यहाँ 3 दिन में है अभी और 2 दिन बाकी है, टेस्ट करने के लिए आओ।
This marks the third year of the festival being held in Delhi, delighting visitors with the exotic taste of Meghalaya and empowering local farmers through direct market access. The 3-day festival is open from 11 in the morning to 8 in the evening and will culminate on the 3rd of this month with Sasmita for Parikrama, Namrata Phalke, Akashvani News, Delhi.
So I think, Jaya, all of us should go and have a taste of it, because pineapple at least is my favorite fruit. Anyway, moving on, the Andhra Pradesh government has introduced self-certification scheme 2025 to streamline building permissions and boost the real estate sector. A report.
In a major push towards enhancing the ease of doing business and accelerating real estate growth, the state government unveiled revised guidelines for Self-Certification Scheme 2025 for building permissions. The new scheme, a part of the state's vision, aimed to simplify the building approval process while encouraging a participatory and transparent approach in urban development. It empowers citizens and licensed technical personnel with a trust-based approval mechanism, marking a shift from heavy regulation to responsible self-governance. The Municipal Administration and Urban Development Ministry issued a GO on the revised guidelines of self-certification scheme, wherein instant online permissions through the online building permission system will allow applicants to begin construction immediately after paying necessary fees. This system eliminates time-consuming scrutiny and replaces it with accountability by licensed technical personnel who must ensure compliance with master plans, zoning rules, and safety standards. Mandatory submission of the plinth-level inspection report within 7 days adds a layer of transparency and discipline. The SCS 2025 will be integrated as Chapter 14 in the Andhra Pradesh Building Rules 2017. It applies to non-high-rise residential projects in plots up to 4,000 square meters in approved layouts, including those regularized under Land Regulation Scheme 2008-2020. Gram Kantam, a smaller plot of open ground under Gram Panchayat having no precise survey number, village sites and redevelopment projects with prior approvals. White category industries on plots up to 500 square meters are also covered. The guidelines apply across all urban local bodies and gram panchayats within urban development authorities, including APCRDA, for plots 300 square meters and above. The move aligns with the Government of India's Special Assistance to States for Capital Investment 2025-2026 by reducing compliance burdens and fostering an investor-friendly environment. Henry for Parikrama, Akashvani, Vijayawada.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। लंदन के ओवल में इंग्लैंड के साथ पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की टीम पहली पारी में 224 रन बनाकर आउट हो गई। करुण नायर ने सबसे अधिक 57 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर 26 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के लिए गस एटकिंसन ने सबसे अधिक 5 विकेट लिए। इंग्लैंड श्रृंखला में 2-1 से आगे है।
एंड इन बैडमिंटन, सेकेंड सीड लक्ष्य सेन has advanced to the men's single semifinal of Macau Open after defeating Zhu Xuan Chen of China 21-14, 18-21, 21-14 at East Asian Games Dome today. He will next take on 5th seed Indonesian Alvi Farhan for a place in the final. Another Indian shuttler, Tarun Manapalli, also entered the semi-final after knocking out Chinese shuttler Hu Xie and 21-12, 13-21, 21-18. And in business, domestic benchmark domestic equity indices today ended month's first trading session in negative territory. Concerns over U.S. President Donald Trump's tariff and persistent foreign fund outflows weighed on investors' sentiment. Sensex shed 586 points or 0.72% to close at 80,600. Nifty fell 203 points or 0.82% to settle at 24,565. In the global crude oil market, Brent crude was trading around 0.4% down at $71.43 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.4% down at $68.95 per barrel. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 98,690 rupees per 10 grams, and silver 9995 was also trading down at 109,840 rupees per kilogram when the reports last came in.
अब वक्त है उन विशिष्ट लोगों को याद करने का जिन्होंने आज जन्म लिया या आज ही के दिन दुनिया से विदा हुए. इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे.
एक अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. कहा जाता है कि ठीक चार साल पहले पहली अगस्त 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन ने असहयोग आंदोलन का मंच तैयार कर दिया था. दोनों आंदोलन भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के इतिहास का अभिन्न अंग है.
असहयोग आंदोलन की विशेषता ये थी कि ये गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और अहिंसक था. 22 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने आंदोलन को निलंबित कर दिया.
ये एक उल्लेखनीय आंदोलन था जिसमें लोग जिस तरह एकजुट हुए थे ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया. ये वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें दूर दराज के गांवों और कस्बों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. आंदोलन ने ब्रिटिश प्रशासन को चौंका दिया और इसने लाखों भारतीयों को उत्साहित किया.
हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी को भी आज याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 अगस्त 1895 को राजस्थान में हुआ था. उन्होंने अपने जीवन का 3 दशकों से भी ज्यादा समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और राजस्थान में रियासतों से उत्पीड़ित लोगों के लिए 6 साल जेल में बिताए.
राम नारायण चौधरी जयपुर के महाराजा कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हुए क्रांति दल में शामिल हुए. वो बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से आकर्षित हुए थे. 1915 में कलकत्ता में एक छात्र के रूप में गांधी जी के भाषण को सुनने के बाद उनके जीवन ने अहिंसक क्रांति की ओर मोड़ ले लिया.
राम नारायण ने विदेशी शिक्षा के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय खुद युवाओं को शिक्षित करने का विकल्प चुना. 1917 में वो जमुना लाल बजाज से जुड़ गए और वर्धा में मारवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ाना शुरू कर दिया.
गांधी जी के सुझाव पर राम नारायण ने वापस राजस्थान जाकर विजय सिंह पथिक, शोभालाल गुप्त, माणिकलाल वर्मा, हरिभाई किंकर और भंवरलाल की सहायता से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया. राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीबों का उत्थान करना और क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों के साथ मिलकर काम करना था.
1922 1920 से राम नारायण और उनकी पत्नी अंजना देवी दोनों ने अपरिग्रह और तपस्या के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने खादी को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया। नमक मार्च राम नारायण के जीवन में वीरता, शक्ति और जिम्मेदारी का नया अनुभव लाया। नमक मार्च के दौरान राम नारायण ने साबरमती आश्रम की प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली।
बाद में वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च में गांधी जी के साथ शामिल हो गए। गांधी जी की सलाह पर वो जल्द ही अजमेर के लिए रवाना हुए और नमक उत्पादकों से कानून की अवहेलना करने का आग्रह किया। इस भाषण के बाद राम नारायण को गिरफ्तार कर अजमेर केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।
राम नारायण ने अजमेर में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 3 वर्ष जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद राम नारायण साबरमती आश्रम चले गए, जहां उन्होंने गांधीवादी साहित्य के बड़े हिस्से का अनुवाद किया।
आजादी के बाद राम नारायण ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। 4 अप्रैल 1989 को अजमेर में उनका निधन हुआ। आकाशवाणी समाचार की ओर से गांधीवादी राष्ट्रवादी नेता राम नारायण चौधरी को शत शत नमन।
आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, राष्ट्रवाद के जनक और लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक की भी पुण्यतिथि मना रहे हैं। उनका निधन 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुआ था। तिलक सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक प्रखर विचारक, शिक्षक, गणितज्ञ, पत्रकार और समाज सुधारक भी थे। उनका नारा स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है।
महात्मा गांधी कॉल्ड हिम द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब्ड हिम एज द फादर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन। तिलक वॉज अमंग द फर्स्ट टू स्ट्रांगली एडवोकेट फॉर स्वराज और सेल्फ रूल and staunch advocate of Hindu culture, social reforms and education. The British labelled him the father of Indian unrest for his radical stance against the colonial rule. He also established the Deccan Education Society in 1884 to promote nationalist ideas and Indian culture through education. Today is also the birth anniversary of Purushottam Das Tandon, the freedom fighter from Allahabad, Uttar Pradesh, widely remembered for his opposition to the partition of India as well as efforts in achieving the official language of India status for Hindi. He was customarily given the title Rajarshi. He was popularly known as UP Gandhi. He was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian award, in 1961.
आज फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी की जयंती है। इनका पूरा नाम मजहबी बानो था। मीना कुमारी अपनी दर्द भरी आवाज और भावनात्मक अभिनय के लिए दर्शकों के बीच बहुत प्रसिद्ध रहीं। उनकी साहिब बीबी और गुलाम, पाकिजा, परिणति, बहु बेगम और मेरे अपने दिल को छू लेने वाली कलात्मक फिल्में हैं। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये डायलॉग।
आप कभी आप मुझे मिल जाते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं। माँ जाने ये मेरा ख्वाब है या मैं पागल हो गई हूँ, मालूम नहीं कब ये ख्वाब टूट जाएगा और किस वीरानी में मेरी आँख खुलेगी, कहाँ मुझे होश आएगा।
Known as the tragedy queen, she is regarded among the finest and greatest actresses in the history of Indian cinema. In her career spanning 33 years from child actress to adult, Kumari starred in over 90 films. She won 4 Filmfare Awards in the Best Actress category. She was the recipient of the inaugural Filmfare Best Actress Award for Baiju Bawra in 1954 and had a consecutive win in the second Filmfare Awards in 1955. She was also a poetess. We have a snippet of her poetry recited by her, self-written.
Chand tanha hai, aasma tanha. चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां।
Oh और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और अनीता को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।